और सब लोग हार लेकर के आए भगवान का सेवा करने। इंद्र वर्षा करा रहे थे, पवन देवता हवा चला रहे थे। इस प्रकार से बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरह से विघ्न था। वसुदेव जी की ये परीक्षा भी थी, लेकिन जो व्यक्ति एक बार कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लेता है, जो अपने सिर पर कृष्ण को ले लेता है, जो एक बार कृष्ण का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके भरण पोषण का, उसके संरक्षण का भार भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं। कृष्ण किसी को पकड़ते नहीं हैं, और यदि किसी को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। यही कृष्ण का कंडीशन है। इसीलिए उनका एक नाम है नंदन, न द न, जो अपने को नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं ही देते हैं, लेकिन जब दे दिए तो फिर वहीं रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वसुदेव जी कृष्ण को अपने सिर पर लेकर के जा रहे थे। शरीर का थोड़ा भी सुदबुद्ध नहीं था, लेकिन कृष्ण की वाणी उन्हें याद थी। कृष्ण ने कहा था कि आप मुझे नंद गोकुल ले चले। उनका लक्ष्य एक था, वह लक्ष्य था नंद गोकुल जाना। बीच रास्ते में क्या हो रहा था वसुदेव जी को कुछ पता भी नहीं था। इतना जोर से आंधी तूफान सब आ रहा था, सब लोग सेवा करने के लिए तैयार थे। बलराम जी ने सोचा मैं बड़ा बनकर आया हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं, इसलिए वे तुरंत शेषनाग अपने रूप में आकर के रक्षा करने लगे। जमुना जी ने प्रवेश किए वसुदेव जी जा रहे थे, जमुना जी अपना कलर दिखाने लगी। कई एक कारण बताए गए हैं जमुना जी बाढ़ आने का। बरसात का दिन था ही, 26 जुलाई के समान खूब वर्षा भी हुआ था। 26 जुलाई है लोगों को ना, हैं जो फंस गए होंगे याद होगा, 2006, 26 जुलाई 2006 ना, खूब वर्षा बम्बई में हुआ था। एनीवे, बाढ़ आने पर नदी में पानी बढ़ ही जाता है, लेकिन जमुना जी भगवान के विरह से रोते रोते, उतना ही नहीं भगवान के चरण कमलों का वे स्पर्श करना चाहती थी। तो जमुना जी का पानी बढ़ रहा था, वसुदेव जी जा रहे थे, पानी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, आंख तक पानी आ गया। अब वसुदेव जी सांस तक भी नहीं ले पा रहे थे, तो भगवान ने परीक्षा किया था और वसुदेव जी परीक्षा पास कर गए। तो भगवान जमुना जी को भी तृप्त करना चाहते थे और वसुदेव जी को भी उनका उद्धार करना चाहते थे, तो भगवान अपना पैर थोड़ा नीचे कर दिए, जहाँ पर उस क्या बोलते हैं टोकरी, हाँ जिस टोकरी में थे, तो बास्केट में थे, वहाँ से अपना पैर नीचे कर दिए। तो जमुना जी को मानो उनके सिर पर लग गया, तो वो भी नीचे चली गई। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर आविर्भूत हुए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी नंद गोकुल गए। तो मथुरावासी सब सोए हुए थे, मानो एनेस्थीसिया दे दी गई थी, उन्हें कोई होश हवास नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन गोकुलवासी जो थे वो सब बहुत सुमधुर सपना देख रहे थे, और सपना में क्या देख रहे थे, कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे थे। कृष्ण के जन्म से लेकर के वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, सब लीलाओं का दर्शन उस रात को वे लोग किए। सपना छोटा होता है, लेकिन मैं जीवन का पूरा सीन हम लोग देख सकते हैं एक सपना में। अमेरिका पहुंच सकते हैं, अफ्रीका कहां कहां नहीं पहुंच जाएंगे सपना में। तो सपना में सब लोग सपना देख लिए, और वो ये भी देखे कि किस प्रकार से वसुदेव जी लेकर के आ रहे हैं उस बालक को। और देखिए नंद बाबा और वसुदेव जी बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। अर्धरात्रि है, गांवों में स्त्रियों को रहने के लिए अलग माल होता है और पुरुषों के लिए अलग होता है। अब वसुदेव जी नंद बाबा के नंद भवन में जा रहे हैं, वहां पर जहां पर जसोदा जी का शयन कक्ष है। जसोदा शयने शब्द आया हुआ है भागवत में, जसोदा जी का शयन कक्ष है। वसुदेव जी मित्र हैं नंद बाबा के, कोई रात को देख लिया होता कि वसुदेव जी जसोदा रानी के कमरे में जा रहे हैं, वो भी अर्धरात्रि को, तो न्यूज पेपर का फ्रंट पेज में आ गया होता। लेकिन जोग माया बहुत सुंदर व्यवस्था की थी कि सब लोग लीला देख रहे थे भगवान का, और वसुदेव जी लेकर के आए, ला करके मैया जसोदा को होश हवास भी नहीं था कि बालक हुआ है कि बालिका हुई है, कि एक बच्चा हुआ है कि दो बच्चा हुआ है, वो भी लीला देख रही थी। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि ज्यों ही भगवान को लेकर के वसुदेव जी आए, जो कृष्ण मथुरा से आए थे वे यशोदा रानी के कृष्ण के अंश थे, और वे उनमें समाहित हो गए, और वहां से छोटी जो बिटिया थी जोग माया उसको लेकर के गए। जब कंस को पता चला, ऐसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण को अपना लेता है, जो हरे कृष्ण वाला बन जाता है, हरे कृष्ण का नाम जप करता है, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आती है। जिस प्रकार से वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर गए तो हाथ की बेड़ियां टूट गई अपने आप, दरवाजे जेल के खुल गए अपने आप, पहरेदार लोग सो गए। लेकिन जब जोग माया को लेकर गया, जब माया देवी को लेकर गया, तब क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया, पहरेदार लोग जग गए, बेड़ियां लग गई। तो जो लोग जोग माया को अपनाना चाहेंगे, जो माया को अपनाएंगे, वो लोग संसार के बंधन में फंसे रहेंगे, लेकिन जो कृष्ण को अपनाएंगे वे इस बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। एनीवे, जब जोग माया आई तो हल्ला हुआ, बच्चा क्या 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 करने लगा, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। बच्चे माँ के घर में रहते हैं, बाहर आकर क्या क्या करते हैं, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, अरे कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। कंस को जब मालूम हुआ तो कंस आया, और उसको एक तरह से आदत पड़ गया था बच्चों को मारने का, वो भी देवकी के बच्चों का। छह को मार चुका था, सातवां तो देख ही नहीं पाया, ये आठवां गर्भ था। जब कंस को मालूम हुआ कि ये लड़की है तो कंस बड़ा खुश हुआ, कहा वाह मेरा प्रताप कितना है, मेरा बल कितना है कि एक आसमानी भी झूठी हो गई, ये भगवान भी डर गया, ये लड़की का रूप धारण कर गया है। तो कहा कोई बात नहीं, ये विष्णु बड़ा चलाक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये मार सकता है मुझे। इसलिए जोग माया को जब मारना चाहा तो तत्क्षण जोग माया अपने स्वरूप में आ गई, दुर्गा के रूप में आ गई, तो समझा ये तो मार नहीं सकती, ये तो हमारी देवी हैं, जो आश्रित प्रवृत्ति वाले होते हैं वो देवी का पूजा करते हैं, जो दैवी प्रवृत्ति वाले में देवता का पूजा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। तो कम समझा कि ये तो मेरी देवी है, ये हमें कैसे मार सकती हैं। देवी ने उसे डांटा, करे दुष्ट, हमारा और तुम्हारा कोई दुश्मनागत नहीं है, मैं तो छोटी बालिका थी, तू मुझे क्यों मारना चाहता था, और तू मुझसे बैर क्यों मोल ले रहा है, एक बात। दूसरी बात, तुम देवकी और वसुदेव को क्यों परेशान कर रहे हो, इन लोगों ने क्या गलती किया है। और तीसरी बात, मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे रही हूं। वह इंफॉर्मेशन यह है कि जिसको तुम अपना बैरी समझते हो काल, वह तुम्हारा काल कहीं जन्म ले चुका है। जोग माया ने एड्रेस नहीं बताया कि कहां जन्म लिया है, लेकिन जन्म ले चुका है, बस शंका डाल दिया। तो कंस ने सोचा कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां गर्भ मेरा काल होगा। जब यह गलत हो गया तो देवी का बात सही कैसे हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है। लगता है मेरा काल है ही नहीं, अब मैं नहीं मरने वाला हूं, अब मैं मरूंगा नहीं। अब कंस निश्चिंत हो गया, 14 साल तक निश्चिंत था कंस, 14 साल तक आराम से खाया पिया, जो करना था किया। हालांकि मन में उसे भय था, जैसे हम लोगों को भय है, मृत्यु सबको भय है, मृत्यु सबको भय, कंस को भय था। भगवान भी इसको समय दिए, यदि भगवान चाहते तो पहले दिन ही कंस को मार सकते थे, लेकिन भगवान असुरों का विनाश करने इस धराधाम पर नहीं आते हैं। भगवान आते हैं भक्तों के प्रसन्नता के लिए, और भक्तों की प्रसन्नता किसमें है, भगवान के गुणानुवाद करने में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, उनका आकार है, और भगवान आकर के लीला करते हैं जिन लीलाओं का गुणगान भक्त लोग कर सके। जो मायावादी है, निराकारवादी है, वो निर्गुण ब्रह्म का क्या गुणगान करेगा, लेकिन कृष्ण का हम खूब गुणगान कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो कृष्ण के गुणगान में दशम स्कंध में 5 जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में से जन्म प्रकरण, उसके बाद तामसी प्रकरण, राजसी प्रकरण, सात्विकी प्रकरण और भक्तिमयी प्रकरण, ये अलग अलग प्रकरण हैं। इनमें से जो तामसी जन्म प्रकरण है उसमें 4 अध्याय हैं। उसके बाद भगवान अब गोकुल चले गए हैं, वहां जो भी लीला किए हैं, 5 से 35, 28 अध्यायों में तामसी प्रकरण का वर्णन किया गया है। तामसी प्रकरण मतलब जो तमोगुणी असुर लोग हैं, उन लोगों को भगवान मारे हैं, पुतना से मारना शुरू किए, सब मिला करके भगवान इस प्रकरण में 21 असुरों को मारे हैं। 14 साल में भगवान 21 असुर को मारे हैं, 1.5 साल में कितना हुआ, 1 साल में 1.5 असुर, जैसे भी हो, 14 साल में भगवान 21 असुर को मारे, और अन्य लीलाएं जो था वो अलग अलग किए, लेकिन असुर को मारने का जो काम था 21 असुर को मारे हैं। और उसमें पहला जो असुर वह थी पुतना, पुतना पहला असुर थी। भगवान के वयस्क का वर्णन है, बाल्य, पौवंड और कैश्वर्य। भगवान 5 साल के जब हैं उन्हें बाल कहा जाता है, बालक। 5 से 10 जो है वह कुमार या पौवंड कहा जाता है, और 10 के बाद वो किशोर अवस्था है 14 साल तक, और भगवान उसके बाद बढ़ते नहीं है, 14 साल के भगवान बूढ़े हैं बस। कोई पूछेगा कृष्ण का आयु क्या है, तो कृष्ण 14 साल के हैं। चाहे महाभारत की लड़ाई हो रही हो, चाहे द्वारका के द्वारकाधीश के रूप में हो, लेकिन भगवान 14 साल के ही थे। और आप देखे होंगे 14 साल के बच्चों को मोछ दाढ़ी नहीं आता है, न तो चश्मा पहनते हैं। आजकल के बच्चे चश्मा पहनते हैं, टीवी खूब देखते हैं, इसलिए लेकिन पहले बच्चे चश्मा नहीं पहनते थे। तो 14 साल में बच्चे किशोर होते हैं। तो भगवान 14 साल तक ब्रज में रहे। तामसी प्रकरण समाप्त होने के बाद अब राजसी प्रकरण प्रारंभ होने वाला था। 14 साल के अंत में श्री राजीव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि एक घटना घटी। जब भगवान रास विहार करने लगे तो कृष्ण के नाम के ऊपर लोग बात करना शुरू किए, तानाफूसी होना शुरू हो गया। लोग बात करना शुरू कर दिए कृष्ण के विषय में, क्योंकि रास लीला में न कि अविवाहित लड़कियां जाती थी बल्कि विवाहित भी जाती थी। तो इस प्रकार से नाम बदनाम होने लगा कृष्ण का। कुछ समय के बाद कोई गोपियां उनसे मिलने नहीं आती थी। तो एक दिन मधुमंगल से कृष्ण ने पूछा कि मधुमंगल भैया, कारण क्या है कि कितना बांसुरी बजाता हूं कोई गोपी आती नहीं मिलने के लिए, कारण क्या है? तो मधुमंगल ने कहा कि मैंने सुना है कि ब्रज की जितनी भी प्रतिष्ठित स्त्रियां हैं वे अपनी बेटियों और बहू को घर में अंदर बंद कर दी है, बाहर से ताला बंद कर दी है, और उतना ही नहीं वो सेविकाएं लगा रखी हैं ताकि कोई भागे नहीं। तो भगवान ने कहा और क्या बात करती हैं सब? तब कृष्ण ने कहा कि अरे बताओ मधुमंगल। तो मधुमंगल ने कहा कि यदि मैं पूरा बात बताऊंगा कृष्ण तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण ने कहा फिर भी बताओ आखिर बात क्या करती हैं। तो दो चार बात बता दिए मधुमंगल। तो कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। कृष्ण को दुख इसलिए नहीं हुआ कि उनका नाम बदनाम हो रहा था। कृष्ण को दुख इसलिए हुआ कि उनकी प्रियतम जो गोपियां हैं उन लोगों को, उनकी बरियसी सास माताएं प्रताड़ना कर रही थी, उलाहना दे रही थी, उन लोगों का नाम बदनाम हो जाता है। तो कहा जाता है कि लड़के जो होते हैं और लड़कियां होती हैं, लड़कियां कहीं किसी के घर पर एक रात रह जाए या रात में कहीं बाहर चली जाए तो उसका नाम बदनाम हो जाता है। कि लड़का कहीं बाहर रहे तो कोई बात नहीं। तो कृष्ण को अपने लिए चिंता नहीं थी लेकिन उन ब्रज गोपियों के प्रति चिंता और बड़ा दुख हुआ कृष्ण को। तो उन्होंने मधुमंगल से पूछा भैया अब तुम बताओ पंडित जी कि हमें अब क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो मधुमंगल ने कहा देखो भाई, कहावत एक है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब तुम यहां पर रहोगे नहीं तो कोई बात नहीं करेगा, कुछ दिन के लिए अमेरिका चले जाओ भिसा से मंगा लो, यहां नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं करेगा, बाहर चले जाओ। और कृष्ण चाहते भी थे, अब उनका ब्रज लीला समाप्त हो चुका था, अब वे जाना चाहते थे। दूसरे दिन नारद जी आ गए। नारद जी आए तो नारद जी से मधुमंगल वाला बात भगवान नहीं कहे, लेकिन नारद से सुनना चाहते कि नारद जी क्या मैसेज लेकर के आए हैं, क्योंकि नारद जी बिना मैसेज के नहीं चलते हैं, वो कुछ ना कुछ मैसेज लेकर चलते हैं सबके लिए। तो भगवान ने पूछा नारद जी अब कहां से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं तो अभी मथुरा से आ रहा हूं, लेकिन प्रभु मैं क्या कहूं, मथुरा की गति बड़ी दुर्गति में बदल गई है। अब नारद जी मथुरा का वर्णन करने लगे। मथुरा का वर्णन करते करते नारद जी देवकी और वसुदेव का वर्णन किए कि किस प्रकार से कंस देवकी वसुदेव और आपके सगे संबंधियों को किस प्रकार से कंस प्रताड़ित कर रहा है। वहां पर ब्राह्मण ऋषि साधु महात्मा बड़े दुखी हैं। हे प्रभु, आप आए हैं यहां पर उद्धार करने के लिए, आप अब मथुरा चलिए। तो भगवान बड़े खुश हो गए, कहे धन्यवाद नारद जी, आप तो मेरे मन का बात कह दिए। मधुमंगल ने ऐसे भी सलाह दिया था कि आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड कहीं चलना चाहिए, तो मथुरा जाने के लिए आप कह रहे हैं। नारद जी ये तो बात सही है कि मथुरा चलूं, लेकिन चलूं सो कैसे चलूं? आप तो जानते हैं कि कंस से और हमारा क्या संबंध है, हमारा वो मामा है लेकिन 36 का आंकड़ा है हम दोनों का, और बिना बुलाए चले जाऊं तो अच्छा नहीं है। ऐसे ही शास्त्र में कहा गया है कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहां अपमान होता है। भगवान शिव भी सती जी को यही बात समझाने का प्रयास किए थे, जब यक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, सब देवता इत्यादि सब जा रहे थे, लेकिन सती और भगवान शिव को बुलावट नहीं आया था तो वे नहीं जा पा रहे थे। तो सती ने भगवान शिव से कहा कि मैं जाना चाहती हूं। भगवान ने कहा कि भाई देखो ऐसा मत करो, क्योंकि वहां से बुलावा नहीं आया है और बिना बुलावे के जाना अच्छा नहीं है। सती ने कहा मेरे बाप का घर है, वहां बुलावे की जरूरत क्या है, मेरा नैहर है, हाँ ससुराल में बुलावा होना चाहिए, नहीं तो लोग कहें कैसी बहू है, भागकर अपने पति घर पर चली आई। माँ के घर जाए कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरे बाप का घर है, किसमें बुलावा की जरूरत क्या है। सती जी ने ही मानी भगवान शिव का बात, उसके बाद का बात क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं, चलिए हम उधर नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो जी हमारे पास बुलावा नहीं आया है, तुम्हें बुलावा के मैं कैसे जाऊं मथुरा, ये उचित नहीं है। तब नारद जी ने कहा तब तो एक काम हमको ही करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। उसी दिन भगवान ने एक असुर को मारा था, उसका नाम था अरिष्टासुर। तो यह जो कथा है अक्रूर जी का मथुरा से वृंदावन आने का, कंस के द्वारा प्रेषित कर करके भेजे द्वारा, वह कथा आज मैं कहूंगा और वह इसी से संबंधित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वहां से। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी वृंदावन से अब मथुरा के लिए प्रस्थान किए, क्योंकि कंस को बुलावा भेजना था, बिना बुलावे के कृष्ण जाएंगे नहीं, और यदि कृष्ण जाएंगे नहीं तो कंस मारा नहीं जाएगा। अब नारद जी जो हैं, नारद का अर्थ होता है नारद, नार मतलब जहां से नर निकला हो, नर का बाप यानी भगवान, और द मतलब देने वाला, जो भगवान को बांटते हो उनको नारद कहते हैं, उनका काम है कृष्ण को देना। तब गोकुल वासियों को कृष्ण को दे दिए थे नारद जी, अब मथुरा वासियों को देना चाहते हैं। तो अब चल दिए मथुरा, और मथुरा जाकर के कंस के सभा में गए। देखिए ये देवर्षि हैं नारद, सबके द्वारा पूजनीय हैं नारद, और कंस के बहुत बड़े हितैषी हैं नारद। इस बात को कंस भी जानता है और लोक विदित भी है। किस प्रकार से कंस का हित किए नारद जी, कंस का हित किए नारद जी कंस से पाप करा कर करके कि तुम मारो इन बालकों को। पता नहीं देवकी का आठवां बालक कौन होगा, पहला बालक होगा कि आठवां वाला होगा, कौन होगा? क्योंकि पहले बालक को कंस छोड़ दिया था, कहा कि इससे हमें डर नहीं, वसुदेव जी ले जाइए, आपके सत्य बात पर मुझे विश्वास हो गया है, यह बालक मेरा काल नहीं है, वो तो आठवां बालक काल है, इसको ले जाइए। नारद जी बीच में टपक पड़े और नारद ने कहा रे मूर्ख कंस, तुम्हें मालूम नहीं है देवताओं की गणना जो है ना, एक और एक एक होता है, और एक में से एक निकाल लो तो भी कितना होता है, एक होता है। ओम पुनमदः पुनमिदं पुण्यात पुनमुदच्यते पुनस्य पुनमादाय पुनमेवावशिष्यते। देवताओं की गणना जो है पुण्य है, अपनी गणना गलत है, एक और एक दो होता है और एक में से एक निकालो तो जीरो हो जाता है, लेकिन देवताओं की गणना पक्की है। तो पता नहीं कि पहला आठवां है कि आठवां पहला है, ये भूल जाओ, इसे सबको मारो, सबको मारो। तो बाह्य दृष्टिकोण से दिखाई पड़ रहा है कि अरे नारद जी तो पाप करा रहे हैं, मरवा रहे हैं बच्चों को, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिखाया था नारद जी क्या कर रहे थे, कंस से कहते तो जल्दी मारो ताकि कृष्ण जल्दी आए तुम्हारा कल्याण करने के लिए। तो नारद जी का काम है कृष्ण को देना। तो ये सब बच्चे जो थे रास्ते में बाधा थे, कृष्ण से मिलने के रास्ते में बच्चे बाधा थे, तो नारद जी ने क्या किया, उस बाधा को खाली करा दिया। अभी आपको एक मंदिर आ रहे हो दर्शन करने के लिए, कोई रास्ते में रोक दे आपको, ट्रैफिक जाम हो जाए, तो बाधा उसे कहते हैं ना, मंदिर आने के बीच में बाधा हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये जो देवकी के और जितने बच्चे थे ट्रैफिक जाम थे, तो नारद जी ने क्लियर करा दिया ट्रैफिक जाम, जल्दी क्लियर करो ताकि कृष्ण का दर्शन होगा। तो इस प्रकार से कंस को नारद जी पर बहुत विश्वास था। अब कंस पुनः आया, सॉरी नारद जी आए कंस के पास, और इष्टे निहते दैत्यम कृष्ण अद्भुत कर्मणा कंसाय कंसाय अथ आह भगवान नारदो देव दर्शन। बोर्ड नहीं लिखा आप लोगों ने, अरिष्टे निहते दैत्य, ये अंतिम दैत्य था, पुतना से लेकर के जितने दैत्य मारे गए थे उसमें से भगवान के कैसोर लीला में अरिष्टासुर नाम का एक असुर आया था। अरिष्टासुर बैल का रूप धारण कर करके आया था। जब कंस दिग्विजय पर प्रस्थान किया था तो अनेक असुरों को परास्त कर करके अपना अनुचर बनाया था। ये अरिष्टासुर बांग्लादेश का था, बांग्लादेशी था, ये बांग्लादेश में निवास करता था। अरिष्टासुर को कंस मथुरा लाया था बांग्लादेश से। अरिष्टासुर पूर्व जन्म में बृहस्पति जी का बड़ा प्रधान शिष्य था, बड़ा प्रधान शिष्य था, कुशाग्र बुद्धि का था। बृहस्पति जी को उसके प्रति बड़ी आदर थी, बड़ा स्नेह था उसके प्रति। तो बृहस्पति जी और ये जो अरिष्टासुर है उसका नाम था बरंतु, पहले उसका नाम बरंतु था, वो ब्राह्मण का पुत्र था और शास्त्र इत्यादि में बड़ा निपुण था, तो थोड़ा दोस्ती जैसे हो गई। अंग्रेजी में कहावत है फेमिलियरिटी ब्रिज कंडेंस, ज्यादा जब फेमिलियरिटी हो जाती है तो वहां गंदगी फैल जाती है। जैसे हम घर में रहते 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 हैं तो केला खाकर छिलका वहीं फेंक देंगे, गंदगी फैला देंगे, कपड़ा वहीं छोड़ देंगे, लेकिन होटल में रहेंगे ऐसा नहीं करेंगे। तो फेमिलियरिटी जो होता है वो गंदगी फैलाता है। तो एक दिन यह बरंतु नाम का जो ब्राह्मण का बच्चा था बृहस्पति जी के सामने पैर फैला करके और वेद पढ़ने लगा, पैर फैला गुरु जी के सामने पैर फैला करके वह पाप पसार करके पढ़ने लगा। तो बृहस्पति जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा मूर्ख है शिष्य जो मेरे सामने पैर फैला करके पढ़ रहा है। तू सो क्यों रहे भाई मेरे सामने, वो तो पैर फैलाया था, तू क्यों सो रहे हो? बृहस्पति जी को गुस्सा आ गया, कह रहे मूर्ख कहीं का, तू बैल के समान पैर फैलाए तो तुम जाओ बैल हो जाओ, बस श्राप दे दिए बृहस्पति जी। तो बैल हो गया जिसका नाम हुआ अरिष्टासुर, बैल का रूप धारण किया था। ये शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, भगवान के सामने कभी भी पैर फैला कर नहीं बैठना चाहिए, कभी भी नहीं, नहीं तो बैल बनना पड़ेगा बृहस्पति जी के श्राप से, ठीक है ना। कभी मंदिर में आकर के भगवान के सामने पैर मत फैलाना, गुरु और साधुओं के सामने पैर मत फैलाना, तो बैल बनना पड़ेगा, अरिष्टासुर बनोगे। एनीवे बाद में जब उसका होश आया कि मैंने बड़ा गलती कर दिया, तो गुरुजी से क्षमा याचना किया। तो गुरुजी को स्नेह तो था ही, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मुक्ति होगा, जब भगवान इस तरह धाम पर द्वापर में कृष्ण के रूप में आएंगे और उनके हाथ से तुम मारे जाओगे और तुम्हारा मुक्ति होगा। यह अरिष्टासुर का जो लीला है बड़ा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका बहुत विशद रूप में वर्णन किए हैं अरिष्टासुर के लीला का। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, भगवान रास के लिए तैयार थे, उसी बीच यह बैल आ गया था जिसको मारना पड़ा। भगवान रास के लिए तैयार थे, सब गोपियों को बुलाए, सब गोपियों ने कहा हम आपसे रास नहीं करेंगे। कहा क्यों भाई, अभी गलती क्या हो गया? कहा आप पापी हो। कृष्ण का पापी हो, कैसे पाप कर दिया, क्या किया? अरे भूल गया, अभी तूने बैल को मारा, तुम पर गो हत्या लग गई है, तू गौ का हत्यारा है, तुम पर गो हत्या का पाप है, हम तुमसे रास नहीं करेंगे। तो गोपियों से कृष्ण कहा तब क्या करना चाहिए, अब तो गो हत्या लग गई, क्या करना चाहिए? तो कहा तुम बड़े पवित्र होकर के आओ। आज भी गांव में ऐसी प्रथा है, किसी के हाथ से कोई गाय मर जाती है तो उसे पवित्र होना पड़ता है, घर द्वार छोड़ करके दूसरे घर में भिक्षा मांगना पड़ेगा, सब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तब पवित्रता होती है। अब जानते हो कि नहीं? गांव वाले जानते, शहर वाले नहीं जानते हैं। शहर वाले तो गाय को मारकर खा भी जाते हैं, वो तो पवित्र होना दूर रहा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तीर्थ स्नान करना पड़ेगा, लेकिन भगवान को तो रास करना था। तो कहा तीर्थों को बुलाने में कहां जाऊंगा, अब मैं तीर्थों को ही बुला लेता हूं, अब तीर्थ स्नान करने कहां जाऊंगा। भगवान उठाए अपना राइट लेग, क्या दाहिना पैर ना, राइट लेग, दाहिना पैर उठाए, दे मारे पृथ्वी पर, और जैसे ही मारे सब तीर्थ आ गए हाथ जो करके। भगवान ने एक कुंड बनाया जिसका नाम है कृष्ण कुंड और श्याम कुंड। भगवान उसमें स्नान किए, अब भगवान तो पवित्र हो गए, अब रास का समय आया गोपियों से, अब गोपियां रास के लिए आई। भगवान ने कहा हम तुम्हारे साथ रास नहीं करेंगे, पहले तू लोग अपने दिखा रही थे, अब मैं दिखा रहा हूं। थके भाई, हमने क्या किया? ताके कि वो अरिष्टासुर असुर था, वो पापी था, तुम लोग पापी का पक्ष लिया, इसलिए सब के सब गोपियां पापी हो गई। तुम लोग पापी का पक्ष ली हो, मैं पापी को मारा हूं और तुम पापी का पक्ष लिया, इसलिए सब के पापी हो। तुम लोग जाओ तीर्थ में स्नान करके आओ, तब रास होगा। अब तो समय बीत रहा था, तो राधा रानी ने कहा ठीक है, हम भी दिखा देंगे। सबसे कहा कि भैया बाना ऐसा करो, तुम लोग एक एक चूड़ी सब तोड़ो। हैं? सब गोपियां जो थी अपना चूड़ी तोड़ करके और वहीं पर अपने चूड़ी से लगी कुंड खोदने, कुंड खोद भी ली, भगवान देख रहे थे, नटवर रूप में देख रहे थे, कुंड खोद भी ली, अब पानी कहां से आएगा। सबने प्लान किया कि हम मानसी गंगा से पानी लेकर के आएंगे। भगवान ने कहा पानी कहां से लाओगी? कहा मानसी गंगा से। कहा मानसी गंगा से क्यों? क्योंकि मानसी गंगा में सब तीर्थ स्नान, एक बार नंद बाबा की इच्छा हुई कि मैं गंगा स्नान करके आऊं, भगवान ने कहा वहां कहीं जाओगे, मैं गंगा कहीं बुला लेता हूं। भगवान बड़े चतुर थे शॉर्टकट काम करने में है? तो वे गोपियां जाना चाहती थी मानसी गंगा में जल लाने के लिए, भगवान ने सोचा रास में बड़ा देर होगा, तो भगवान की इच्छा को समझते हुए तीर्थराज ने आकर के राधा रानी के चरणों में पड़ करके और अनुनय विनय करने लगे, राधा रानी के चरणों को धो दिए। राधा रानी प्रसन्न हो गई और तीर्थराज से पूछी बताइए कि आपकी इच्छा है, क्या चाहते हैं? ताकि हे देवी यदि आप गुस्सा न करें तो देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, हम लोगों का सौभाग्य होगा कि आपके कुंड में हम लोगों को निवास करने का स्थान मिले। राधा रानी समझ गई कि कृष्ण का ही काम है, कृष्ण मित्र आंख मार दिए, तो राधा रानी भी स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं। तो तीर्थराज के साथ में सब तीर्थ आकर के राधा कुंड में निवास किए। अभी था दोनों में भेद, अब तो दोनों पवित्र हो गए, गोपियां पवित्र हो गई और कृष्ण भी पवित्र हो गए। तो भगवान ने कहा है भेद किस काम का, भगवान बीच में रास्ता तोड़ दिए, इसलिए राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों का पानी जो है मिलता है, बीच में छेद हो गया ना, भगवान छेद कर दिया कि भेद नहीं होना चाहिए। दो प्रेमियों के बीच में भेद होगा तो प्रेम नहीं रहेगा, भेद नहीं होना चाहिए। डाउट्स आर लाइक डीमन, भेद नहीं होने चाहिए, भगवान भेद को तोड़ दिए। एनीवे ये तो मैं आपको संक्षिप्त में बताया राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति का लीला, लेकिन ये लीला हुआ अरिष्टासुर के मारने से। ये अंतिम भगवान की जितनी तीर्थस्थलियां हैं ब्रज में, ये नंदगांव सॉरी राधा कुंड और श्याम कुंड अंतिम तीर्थस्थली है। तो अरिष्टे निहते दैत्य, जो दैत्य था उसको मार करके कृष्ण अद्भुत कर्मणा, विराघव गोस्वामी कहते हैं अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्मणा का मतलब अलौकिक कर्म। और उन्होंने उद्धृत किया है भगवान के भगवत गीता के पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवित त्यक्तवादि हम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। इस श्लोक को भगवान का जन्म कैसा है, दिव्य है। भगवान का कर्म कैसा है, दिव्य है। नारद जी वही बात कहते हैं अद्भुत कर्मणा, भगवान का कर्म कैसा था, अद्भुत कर्म था। सब भगवान आना चाहते थे मथुरा, लेकिन कंस के द्वारा नेवता भिजवा करके आना चाहते थे। तो भगवान का अद्भुत कर्म है, अद्भुत कर्म है। कंसाय अथ आह, अद्भुत कर्मणा का अर्थ है कि अब तक से जितना भी कर्म कृष्ण किए थे वृंदावन में, पुतना के मारने से लेकर के गोवर्धन लीला रास लीला, जितने 21 असुर मारे गए थे, नाम गिन गिन कर करके बताए, इस कृष्ण ने किया, इसका अद्भुत कर्म है। देखने में छोटा है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये घाव बड़ा करता है, छोटा केवल देखने में है। कृष्ण और बलराम ने जो जो कर्म किया था उसका नारद जी चुन चुन कर वर्णन कर रहे थे। एक श्लोक को नारद जी, सुखदेव गोस्वामी तो तक्षण ऐसे कह दिए हैं, लेकिन नारद जी इसका वर्णन जब कर रहे थे तो कई एक दिन लग गया होगा ये वर्णन करने में, कृष्ण के अद्भुत कर्मों का, 14 साल के सब लीलाओं का। कंसाय अथ आह, अंत में अरिष्टासुर के वध का बात कहे भगवान, कौन कहा, भगवान नारदो देव दर्शन। नारद जी का विशेषता यहां पर दिया गया है, नारद जी कैसे हैं, भगवान, भगवान मतलब सर्वसमर्थ, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जाने। तो नारद जी सर्वसमर्थ हैं इसलिए इनको भगवान कहा गया है। और देव दर्शनम, देव दर्शन के कई आचार्यों ने कई एक रूप में वर्णन किया गया है। देव दर्शन जिनके जीवन का लक्ष्य है भगवान का दर्शन, पहला मतलब साधु वही है जो देव दर्शनी है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी गवि हस्तिनी सुनी सैव सपाक च पंडिता समदर्शिना। जो ब्राह्मण है पंडित है वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। तो नारद जी कैसे हैं, देव दर्शन, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। और देव दर्शन का अर्थ क्या है, जो दूसरों को भगवान का दर्शन दिलाते हैं। उसके लिए आता है कि कंस को भगवान का दर्शन दिलाने के लिए नारद जी यहाँ पर आए हैं कि कंस अब तुम्हारा सौभाग्य जग रहा है, भगवान आएंगे, उनका तुम दर्शन कर सकते हो। देव दर्शन पश्यति सर्वम इति देव दर्शनम, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करे देव दर्शन। देवाश्चैव दर्शनम च इति, जो देवताओं के बीच में जाकर के भी भगवान के संदेश को बतलाए वो देव दर्शन ही कहलाता है। देव कार्य असधा कतत्वम आह, जो देव कार्य में ही जो देवताओं के पास जाकर भी भगवान का दर्शन कराए, देवताओं को भी दर्शन भगवान का उतना दुर्लभ सुलभ नहीं है, लेकिन नारद जी जाते हैं तो देवता लोग नारद जी को देख करके भगवान का दर्शन कर लेते हैं। देव कार्य सधाकत्वम, देवताओं के यानी भगवान के कार्य को सिद्ध करने वाले जो हैं वो हैं देव दर्शन। देवानाम इंद्रादि नाम इव दर्शन इति, देवताओं को भी जो दर्शन दे वे हैं देवदर्शी। इंद्रिय ज्ञानम यह यति देवस्य हरे दर्शनम अस्य, जिनकी इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा में लगी हुई है, समस्त इंद्रियों से भगवान का जो दर्शन करते हैं वे देवदर्शी हैं। हम लोग केवल आंख से दर्शन करते हैं, नारद जी कान से दर्शन करते थे, जिह्वा से नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, भगवान का नाम गा करके समस्त अंगों से भगवान का दर्शन करते होंगे, अंग प्रत्यंग भगवान का दर्शन करते थे, वे थे नारद। इसीलिए नारद जी को यहां पर कहा देव दर्शन, देव दर्शन, भगवान नारदो देव दर्शन, बड़ा सुंदर शब्द है। एनीवे ये पूरा अध्याय खत्म करना है इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ता हूं। तो जब अरिष्टासुर का वध हो गया, जब कंस को मालूम हुआ, और अरिष्टासुर बहुत विशाल काय दानव था, कोई ऑर्डिनरी नहीं था, तो कंस ने कहा कि ये तो असंभव बात है, ऐसा कैसे हो सकता है और किसने किया। तो नारद जी के मुंह से आ गया तुम्हारा काल किया। कहा मेरा काल, मेरा तो काल कोई है ही नहीं नारद जी, अंगूठा दिखा दिया कंस। कहा मेरा काल नहीं है, मेरे लिए जो आकाशवाणी हुई थी ना कि देवकी का आठवां घर मुझे मारेगा, अरे हमारे घर से लड़का नहीं लड़की हुई, वो भी हाथ हाथ वाली चली गई, वो भी कुछ नहीं कर पाई, तो अब तो मैं अमर हूं, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा रे मूर्ख, तू इस किस विडंबना में किस भ्रम में पड़े हुए हो, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। अरे जिसने तुमको पुतना से लेकर के तुम्हारे अरिष्टासुर तुम्हारे पहलवानों को जो मार डाला है, कभी सोचा है वो कौन है? वही तुम्हारा काल है। कौन से कहा कि नहीं नहीं आप हमको भुलवा रहे हो, अरे मैंने तो सुना कि नंद गोप का बेटा है कृष्ण, आकाशवाणी तो वो तो देवकी का बेटा हमें मारेगा, वो तो नंद गोप का बेटा है, वो कैसे मार सकता है। तो नारद जी कहते हैं अरे मूर्ख अब सुनो, अब मैं तुमको सही बात बतला रहा हूं, बात सही क्या है। कहते हैं जसोदया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेव न विद्यता न्यस्तौ स्वामित्रे नंदे वही आभ्याते पुरुषाहता। कहते मूर्ख कंस तुम सुन, जसोदया सुता कन्या, जो कन्या का बात कह रहा है ना कि देवकी का आठवां गर्भ कन्या था, वो कन्या देवकी की नहीं थी, वो जसोदा की थी। मतलब कि 14 साल तक कंस को मालूम ही नहीं था कृष्ण के विषय में कि वही देवकी के पुत्र हैं। नारद जी भंडा फोड़ रहे हैं, सब बात बता रहे हैं नारद जी। जसोदया सुता कन्या, जो कन्या थी वो देवकी की नहीं थी, वो जसोदा की थी। और देवक्या कृष्णम एव च, क्या सुंदर बात सुखदेव संग है। और देवकी का बेटा कौन है? कृष्ण। एव च, एव मतलब निश्चित ही, इसमें कोई दोरा नहीं है, और च का मतलब याद करो आकाशवाणी, यही वो आठवां बालक है तुमको मारने वाला है। बस भैया तुम मानो या मत मानो, बस बात यही है। एव च, देवकी का ही गर्व है यह कृष्ण, और च मतलब यह तुम्हारा काल है। तो मानो कंस पूछता है, करे तो वो तो बात हुआ था एक ही का है, तो दो हैं, दो मिलकर मारते हैं प्रलम्बा श्रुत्यादि को। नारद जी, ओ नारद जी, यहां तो कंस है उपदेश रहे, सो रहे आप कर भी करो करे हो। तो बलराम कौन है? रामम च रोहिणी पुत्रम, रामम च, च कहने का मतलब एक और अर्थ है कि यह जो राम है बलराम ना, ये पहले देवकी का बच्चा था, वो देवकी के घर में था। रामम च, ये राम जो है वो देवकी के घर में था, बाद में क्या हो गया? रोहिणिया पुत्र, अभी वो रोहिणी का बेटा कहलाता है। वसुदेव है ना दिव्यता, और ये दोनों किसके बच्चे हैं? कृष्ण बलराम वसुदेव के हैं। कंस, देवकी और रोहिणी के गर्भ से जन्मे ये कृष्ण बलराम वसुदेव के ही बेटे हैं। कंस, अरे वसुदेव के बेटे हैं, मैं उनको जेल में डाल कर रखा हूं, तो वहां कैसे पहुंच गया? वसुदेव का जादूगर आदमी कुछ है, कुछ जादू कर दिया, और वहां कैसे भेज दिया? कदा विभ्यता, तुम्हारे डर से, तुम्हारे डर से वसुदेव ने ऐसा किया। तो गोकुल में क्यों भेजा? न्यस्त सुमित्रे नंदे, क्योंकि वसुदेव का नंद जो है मित्र है, तुमको भरे कर देता हो, लेकिन वह वसुदेव का मित्र, और तुम्हारे डर से वसुदेव का एक जो पत्नी रोहिणी है उसको और देवकी के पुत्र को पालन किया है। कहते और जितने भी थे तुम्हारे द्वारा मारे गए, लेकिन ये देवकी और वसुदेव के दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, अभी जीवित हैं, यही तुम्हारे काल होंगे। निशम्य तद भोजपति कोपात प्रचलित इंद्रिय निशातम असीम आदत वसुदेव जिहांसया। निशम्य तद भोजपति, भोजपति कंस ने जब वसुदेव जी से यह बात, सॉरी नारद जी से यह बात सुना कि वसुदेव हमारे साथ छल किया, अरे मैं तो समझता कि चंद्र टरे सूरज चरे टरे जगत व्यवहार, पैदृण श्री वसुदेव के टरे न सत्य विचार। वसुदेव सत्यवादी हैं, उनका विचार कभी बदल नहीं सकता है, लेकिन वसुदेव भी हमारे साथ में धोखाबाजी किया, बाप रे बाप। वो कहा था कि मैं सब बच्चों को ला करके दूंगा, लेकिन जो असली बच्चा था उसके लिए मैं कहा था पहले भी कि हमें अन्य बच्चों से डर नहीं है, डर आठवें बच्चे से है, जो असली था उसी को नहीं दिया। विश्वासघात किया, विश्वासघाती है वसुदेव। इतना कहकर के कंस तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाला। कोपात प्रचलते इंद्रिय, यहां विशेषतः कंस का, कंस काप रहा था गुस्सा के चलते, कंस काप रहा था, थरथरा रहा था उसकी समस्त इंद्रियाएं। और निशात असित आदत, वो तुरंत अपने तेज तलवार को म्यान से निकाला और वसुदेव जी को मारने के लिए चल दिया। तो नारद जी कंस का हाथ पकड़ लिए, तुम क्या कर रहे हो मूर्ख, कहीं का देवकी वसुदेव क्यों मारना चाहते हो, तुम भूल गया? अरे देवकी वसुदेव तुम्हारे कारण नहीं है, ये तुमको नहीं मारने वाले हैं, तुम और पाप क्यों करने जा रहे हो? मारने वाला कौन है? कृष्ण। तुम कुछ ऐसा करो कि कृष्ण बलराम तुम्हारे पास आ जाए, देवकी वसुदेव को मत मारो। और एक बात और सुन लो, कहीं तुम देवकी वसुदेव को मार दिया और कृष्ण को मालूम चल गया कि तुम मार दिया उनको, तो दो चीज हो सकता है। एक हो सकता है कि वो आकर तुरंत तुमको मार डालेगा, जो कि बात सही है, और नहीं तो समझेगा कि अरे अरे वसुदेव जी तो इतने महान विष्णुवंशी हैं, उनको कंस मार दिया, हो सकता है हमको ही मार देगा, इसलिए वहां से भाग जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अभी तुम दोस्ती करके रखो वसुदेव जी को। तो कहा कि देखिए, और तो वसुदेव को ये बात मालूम हो ही गया है, तो नंद को जाकर के वसुदेव कुछ सूचना दे देगा, तो नंद उन बालकों को लेकर भाग जाएगा, तो फिर मैं उनको कैसे मार सकता हूं। तो नारद जी ने कहा और तुम दूसरा कोई काम कर लो, लेकिन मारो मत। निवारितो नारदेन तस्सुदौ मृत्युम आत्मना ज्ञात्वा लोहमयी पासै बंद सभारेया। ये प्रमाणित करता है कि 14 साल तक वसुदेव और देवकी भी कारागार में नहीं थे, वो भी अपना जीवन यापन कर रहे थे कंस के सलाहकार के रूप में। आप लोग प्रथम 4 अध्यायों को पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि अंत में जब देवी ने दर्शन देकर कंस को कह दिया कि तुम्हें मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, तो उस समय कंस बहुत क्षमा याचना किया था वसुदेव जी को और देवकी को, क्योंकि वसुदेव जी आखिर कंस के बड़े हित मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और मित्रता व्यवहार कर रहा था। उसी बीच में नारद जी आकर के दूध में खटाई डाल दिए, गड़बड़ कर दिया करके बोल दिए। अब जो कंस शांत था वसुदेव जी के प्रति गुस्सा में आ गया, वो तो मारने चल दिया, लेकिन नारद जी सोचे कि हमारे कहने से भगवान के बाप मां मारे जाए तो हम बड़ा पापी हो जाएंगे, तो भगवान ने उनका निवारण कराया और कह दिया और साधन तुम देखो। तो उसने क्या किया, ज्ञातवा लोहमयी पासई बंद सभार्या, वसुदेव जी को उनके भार्या के साथ में, पत्नी के साथ में लोह पास यानी जेल, लोह पास मतलब जेल, जेल में इन दोनों को पुनः डाल दिया, देवकी और वसुदेव को डाल दिया। यहां पर हरिवंश में वर्णन किया गया है कि नारद जी इतना कहकर चले गए, कंस तुरंत एक बहुत बड़ा सभा बुलाया, सब लोगों को बुलाया और कहा कि अभी अभी मुझे मालूम हुआ है, पता चला है कि मेरा जो काल है, देवी ने कहा था जन्म ले लिया है, जिसको आकाशवाणी ने कहा था वो मेरा काल अब जन्म ले चुका है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, लेकिन हमारे गुरु नारद जी आकर के सब बात बता दिए, अब मुझे मालूम हो गया है, अब आप हमारे सगे संबंधी हित मित्र बतलाइए कि अब क्या करना चाहिए। तो जितने लोग थे सब लोगों को कंस मिला करके रखा था। देखिए असुरों में एक गुण है, वो गुण यह है कि जितने भी अपने उसके सगे संबंधी हैं, यानी जो उसका चापलूसी करते हैं, उनके लिए खजाने का दरवाजा खोल देते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज आदि जब वन में चले गए तो दुर्योधन सब प्रजा को जीतने के लिए हस्तिनापुर का सब खजाना लुटा दिया था उन लोग अपने पक्ष में करने के लिए, वैसे ही कंस अब जितने लोग थे वसुदेव देवकी से लेकर के सब लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। तो अब कंस जब पूछा कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो सब लोगों ने एक मत से यही कहा कि महाराज अब करना ही क्या है, जब पता चलिए गया कि आपका काल कौन है, तब तो अब व्यवस्था करनी चाहिए कि उसको हम जल्दी खत्म करें, वो खत्म कराएं जल्दी। तब कंस ने कहा कि लेकिन जो उसका जड़ है उसको जड़ से खत्म करना चाहिए ना जी, अब जो पेड़ है यदि पेड़ के जड़ को नहीं उखाड़ेंगे, टहनी पत्ता तोड़ेंगे, तो फिर जड़ से पेड़ आगे आ सकता है, तो सबने कहा कि हाँ जी जड़ क्या है। तब कंस ने कहा कि जड़ हम लोगों के मध्य में बैठे हुए हैं, हमारे हितैषी, हमारे प्रिय मित्र वसुदेव जी, यही वे हैं जो हम लोगों से विश्ववंश, यदुवंश, रोजवंश से इन्होंने बहुत बड़ा कुठारघात किया है, इन्होंने बहुत बड़ा छल किया है। इन्होंने कसम खाया था कि आठवां पुत्र ला करके मैं दूंगा, लेकिन वो दिए नहीं, उसको एक्सपोर्ट कर दिए। कहां पर? नंद गोकुल में, उसका नाम है कृष्ण। वहां पर कंस ने खूब दुत्कारा वसुदेव जी, खूब गाली गलौज, जितना उसके बाप जितना गुस्सा था वो सब निकाल दिया। सब लोग चुपचाप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन वहां पर जो अंधक लोग थे, अंधक लोग बड़े पहलवान हैं, वे अंधक लोग गुस्सा में आ गए और कंस को भी भला बुरा कह दिए। बाद में कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। उसके बाद अपने सगे संबंधी और मित्र, ये तीनों में अंतर होता है। मित्र तो वे होते हैं जिनके साथ मन मिल जाता है, उसे मित्र कहते हैं। जिसके साथ मन मिल गया वो मित्र कहते हैं, और मित्र प्रायः स्वार्थी होते हैं। पैसा है तो चारों तरफ घूमेंगे, पैसा नहीं है तो कोई नहीं आएगा। तो ये सगे संबंधी जो थे, सगे जो होते हैं वो ब्लड रिलेटिव होते हैं, और संबंधी मतलब ससुर हो गए इत्यादि, पत्नी के रिलेशन से या बेटी विवाही हो गई, वो संबंधी हो गए। तो उसने सगे संबंधियों को बुलाया। ये जरा संघ जो है वो संबंधी हैं, लेकिन अक्रूर इत्यादि जो है वो सगे हैं। महाराज सुरसेन, उग्रसेन, उद्धव, सत्यकी, कृतवर्मा, ये सब सगे लोग हैं। तो कंस सब लोगों को बुलाया और सबसे मीटिंग किया। पहले मित्रों से मीटिंग किया, पहले मित्रों से मीटिंग किया, चाणूक, मुष्टिक इत्यादि से मीटिंग किया, और कहा कि देखो, हाँ मैं एक बात भूल गया। तो नारद जी से कंस ने पूछा था कि मैं करूं क्या, और मैं जा रहा हूं गोकुल और वहां जाकर कृष्ण को मैं मारूंगा। तो नारद जी ने कहा, देखो भाई, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें मालूम हो या ना हो, कुत्ते भी अपने द्वार पर शेर होते हैं। तुम्हें मालूम है ना, कितने लोगों को मालूम है, कुत्ते अपने द्वार जो सो रहे हैं उनको जरूर मालूम होगा, कुत्ते भी अपने द्वार पर शेर होते हैं, काटे आना जाए भोग भोग भो जरूर करेंगे, हैं? तो नारद जी ने कहा कि देखो, यही छोटा कृष्ण तुम्हारे 21 ससुरों को मार डाला है, तो तुम मानना पड़े, कोई अड़ी अड़ी बालक नहीं है, और तुम वहां जाओ, कहीं तुम भी मारे जाओगे तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। तुम राजा हो भैया, अब तुम्हें मारना है, तुम ऐसा करो, तुम उसको अपने पास बुलवा लो। और भगवान तो यही चाहते थे ना कि मैं बुलावा आ जाए। नारद जी इसलिए आए थे, किस लिए? संदेश भिजवाने के लिए। नारद जी बोले, हमारा काम हो गया, नारायण नारायण, चल दिए नारद जी। अब नारद ने सोचा कि हाँ, सॉरी कंस सोचा कि हाँ यही बात है, बुलाना चाहिए और कृष्ण को बुलाना चाहिए। तो कृष्ण को बुलाने के लिए साहब बुलाया था, तो क्या क्या करना चाहिए? पहले अपने पुरोहित शुक्राचार्य का एक पुत्र था, उसका नाम था सत्यक। सत्यक को कहा, गुरुदेव, नारद जी ने बात कहा है, क्या करना चाहिए? बुलाने के लिए कुछ तो हमारे भांजे हैं, वो भी जानते हैं, मैं उनका मामा हूं, अब मैं भी जान गया कि हमारे भांजे हैं। तो भांजे पहले बार ननिहाल में आ रहे हैं, सब लोग जानेंगे कि भाई ननिहाल में मामा कंस बुलाए हैं देवकी के पुत्रों को, तो उनका सम्मान अच्छी तरह से होना चाहिए, तो कोई प्रयोजन होना चाहिए बुलाने के लिए। तो सत्यक ने कहा कि एक प्रयोजन करना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन एक ऐसा चीज होता है कि शत्रु को भी हम मित्र बना सकते हैं और मित्र को भी शत्रु बना सकते हैं। यदि बेटी का विवाह हो या बेटे का विवाह हो,
यदि शत्रु के पास आप न्योता दे दीजिए तो शत्रु बेचारा खुश हो जाएगा, भले आए या ना आए, कहे कोई बात नहीं, उनको याद तो किया। और यदि मित्र के पास भी न्योता न दीजिए तो अमिताभ बच्चन से पूछिए जाकर के। मैंने पढ़ा था पेपर में कि शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन बड़े अच्छे मित्र थे। अमिताभ बच्चन अपने बेटे की शादी में शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बुलाए, बाद में मिठाई भेज, मिठाई भेज दी, हमें मिठाई नहीं चाहिए है? तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं नहीं बुलाओ भेजने पर, सावधान रहना चाहिए। तो सत्यक ने ही कहा कि अच्छा अवसर है कि कृष्ण चलो कोई बात नहीं, वो तो आपका मामा समझता है ना, आप समझते भले आपका काल है, उसको बुला लो यज्ञ में। तो यहां एक यज्ञ हो रहा था, तो बात हुआ कौन यज्ञ हो, तो कहा देखिए भगवान शिव का मृत्युंजय यज्ञ करना चाहिए है? यहां भी जब तकलीफ होता है तो लोग अपने घर में मृत्युंजय पाठ कराते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। कंस को बड़ा डर था, रात को नींद नहीं आ रही थी, ठीक उसका वही भाव हो गया 14 साल पहले था जब कृष्ण मुझे मारेगा, कृष्ण मुझे मारेगा, कृष्ण मुझे मारेगा। तो मृत्युंजय यज्ञ हुआ, उसमें क्या था कि भगवान शिव का एक धनुष था, एक त्रिपुरा, जिससे त्रिपुरासुर का वध किए थे भगवान, तीन धनुष बने थे दधीचि के शरीर से, एक धनुष जिसको भगवान श्री राम तोड़े थे, एक धनुष भगवान शिव के पास था, दो इनफैक्ट ऑल धनुष शिव के पास ही था, एक धनुष भगवान नारायण लिए थे और दो धनुष भगवान शिव के पास था, एक धनुष जनकपुर में था जिसको भगवान राम तोड़े थे, दूसरा धनुष जो था भगवान शिव को नंदी पसंद कर लिया था, नंदी को दिए थे, नंदी ने बासुर को दिया, बासुर ने भगवान परशुराम को दिया। और जब कंस दिग्विजय पर जा रहा था, महेंद्र पर्वत पर गया, तो महेंद्र पर्वत को अपने कंधे से, कंधे में खुजली आ रही थी, खुजलाने लगा महेंद्र पर्वत पर, तो महेंद्र पर्वत हिलने लगा, तो भगवान परशुराम अपने समाधि से उठे और कहे कौन क्षत्रिय अभी जीत रह गया है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, फरसा उठाए मारने के लिए। तो कंस कहा कि हे भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं तो वैश्य हूं, मैं आपका एक दास हूं। कंस के प्रार्थना पर भगवान परशुराम बड़े खुश होकर के वह पिनाक धनुष दे दिए थे कंस को, तो वही धनुष था। सत्यक ने कहा कि देखिए जी, इससे दो चीज हो सकता है, जो व्यक्ति धनुष को उठा लेगा या धनुष को तोड़ देगा तो आपका जग भंग हो गया, जग भंग हो गया इसका मतलब कि आप गए काम से, जो धनुष तोड़ दिया वही आपका काल होगा, धनुष नहीं टूटा तो आपको कोई नहीं मार सकता है। तो कंस वैसा ही किया और खूब व्यवस्था किया गया इधर। अब जब भी कभी गांव में कोई यज्ञ होता है या कोई पर्व त्योहार मनाया जाता है तो बेचने वाले बाहर बच्चों के लिए बलून बेचने वाले, चना बेचने वाले सब आकर अपना भी वहां लगा देते हैं दुकान कुछ पैसा बनाने के लिए है? तो वहां भी गांव गांव से लोग आए, कोई दूध लेकर आया, दही लेकर, यज्ञ होने वाला है ना, बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। तो कंस ने कहा कि मनोरंजन का साधन होना चाहिए, तो एक अखाड़ा बनाया गया, अखाड़ा समझते हैं ना, जहां पर कुश्ती लड़ी जाती है। तो चारुक और मुष्टिक को कंस का, भैया देखो तुम लोग हमारे हितैषी हो, तुम लोगों को हमारा कल्याण करना पड़ेगा। अब ये कंस बुला रहा है, अपने काल को ही मान लो, यदि ये मेरे काल हैं तो मैं चाहूं कि पहले तुम लोग देखो कि असली मेरे काल है कि नहीं। तो चाणुक मस्तिष्क को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया लड़ाई कराने के लिए, कुश्ती के लिए। और कुवलिया पीड़ जिसको जरासंध दहेज दिए थे कंस को दो पुत्रियों के साथ में, उस कुवलिया पीड़ को दरवाजे पर रखा गया था। महावत से कंस ने कह दिया कैसा करो, कुवलिया पीड़ को खूब शराब पिलाना और जब कृष्ण बलराम आए तो बाहर से दिखाई पड़ता है कि मामा जी भांजे का हाथी से स्वागत कराते हैं। हाथी किसी फंक्शन में हाथी को बाहर रहना मतलब शुभ माना जाता है, शादी विवाह हो चाहे कोई फंक्शन हो, हाथी माला लेकर के माला डाले तो शुभ माना जाता है। लेकिन कंस का विचार था कि कुबलिया पीर जो है पहले मार डाले कृष्ण बलराम को, यदि वहां नहीं मरते हैं चारणु और मुस्टिक मारे, वे नहीं मार पाएंगे तो मैं मारूंगा। तो इस प्रकार से हित मित्रों से कह दिया, अब संबंधियों से कहना शुरू किया जरासंध इत्यादि से, कहा कि देखिए पहले तो मैं कृष्ण को मरवाऊंगा और उसके बाद में उसके साथ में नंद जसोदा जितने देवता लोग हैं, वसुदेव देवकी मेरे पिताजी उग्रसेन सबको मैं मारूंगा, उसके बाद हम सब लोग मिलकर के अकंटक राज भोगेंगे। तो इस प्रकार से प्लानिंग कर रहा था कंस। अब सगे लोगों के बीच में बात करना शुरू किया और उन्हीं सगे लोगों में से वह वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी को सॉरी वह बुलाया अक्रूर जी को, अक्रूर जी भी सगे हैं। इति अवाप्य अर्थतंत्र आह्य यदु पुंगव गृहत्वा पाणिन पाणि ततो अक्रूर उवाच ही। इति संस्कृत में दो शब्द है अथ और इति, शुरू हुआ अथ से और इति मतलब समाप्त हो रहा है। सब लोगों से बात करने के बाद अब कंस अक्रूर जी से बात करना, जब कुछ लोग थे जिसको भेज सकते थे बुलाने के लिए, कौन कौन थे? अक्रूर जी जो कि एक एज वाले थे, चाचा भी लगते थे, कृतवर्मा थे, वसुदेव थे, उद्धव थे, सातकी थे, उद्धव सातकी छोटे थे कृष्ण के वयस्क वाले थे, तो उन लोगों को भेजना कंस उचित नहीं समझा। कृतवर्मा का कृष्ण के प्रति स्नेह था क्योंकि वसुदेव के घनिष्ठ मित्र और भाई में से थे। अक्रूर चचेरे थे इसलिए अक्रूर को भेजना उचित समझा। तो अक्रूर जी को बुला करके गृहित्वा पाणिन पाणि ततो अक्रूर उवाच ह, मतलब हृदय खोल करके अब कंस कहने जा रहा है अक्रूर जी से, हाथ पर हाथ रख कर करके। इन्हें मैं श्लोक बाय श्लोक नहीं जाऊंगा, नहीं तो दो घंटा और लगेगा, मैं संक्षिप्त में कहूंगा। अब तो अक्रूर जी को बुला करके नारद जी के द्वारा कहे गए समस्त बातों को कंस बताया। देखिए हाथ में हाथ लेकर के और कह रहा है कि हे अक्रूर जी, आपके समान दूसरा कोई हित ऐसी नहीं है, आप कृपा करके हमारा एक हित कामना कीजिए। मेरी इच्छा है कि आप जाइए कृष्ण बलराम को तत्क्षण लेकर के आइए और मैं क्या करने वाला हूं पूरा प्लान अक्रूर जी से खोल कर कह दिया। हर शब्द जो है जी गोस्वामी कहते हैं कि हृदय खोल करके कंस बात कहा और उसने ये भी कहा जब मैं कृष्ण बलराम को मार लूंगा सब मारे जाएंगे तो हम लोग अकंटक राज करेंगे। तो मानो अक्रूर जी ने कहा रे वृंदावन तो दूर है, मैं जाऊंगा कैसे? कंस ने कहा उसका चिंता मत कीजिए, अरे आपके लिए मैं नया रथ बनवाया हूं। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं हाँ जी कंस की बुद्धि सही थी, भगवान को लाना था तो भगवान थोड़े उस रथ पर आएंगे इस पर कंस पापी बैठा हुआ हो या कोई बैठा हो, तो भगवान के लाने के लिए नया ही रथ होना चाहिए। इसलिए कंस नया रथ बनवाया था और अक्रूर जी उस पर सवार होकर के दूसरे दिन प्रस्थान किए। तो अब तक से मैं आप लोगों को बताया कि कंस किस प्रकार से अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन भेजा और मथुरा से वृंदावन जाने पूरा एक दिन लग गया था, कई एक लोग संशय में पड़ गए थे, ब्रजदेवी संशय में पड़ी हुई थी, वनदेवी संशय में पड़ी हुई थी, अक्रूर जी संशय में पड़े हुए थे, संशयमयी बातें हुई तब तक जब तक कृष्ण से मिले नहीं। उनका नाम है अक्रूर, जो क्रूर ना हो। तो ये भी 7 दिन की कथा है, अक्रूर जी कैसे पहुंचे ब्रज में और ब्रज से कृष्ण को कैसे मथुरा लेकर के आए, वो कभी बाद में कथा होगी। तो मैं ही कथा का विराम करूंगा। कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। और जब जिनकी जो ये सेवाएं हैं, आप लोग कृपा करके अपने सेवा में जाएं। हरि बोल। जो भक्त लोग कार पार्किंग और पिचिंग सेवा, पानी सेवा, सब लोग हर का सब लोग कृपा करके है, पता चलना चाहिए ना, तो कहीं अलग अलग ढूंढ जाएंगे ना। कृपा करके 2 मिनट के अंदर गुरुकुल में पहुंचिए। जो लोग हमारे से कार लिया है, कार सेवा कार, कृपा करके गुरुकुल में पहुंच जाइए। सेवा के बारे में बता दीजिएगा क्या क्या सेवा करना है 5 मिनट के अंदर। हरि बोल गौरंगा। चलिए फटाफट माता जी पहुंची। सब लोग जो लोग कांग्रेस से हमारे ऑफिस से कार बनाया है, कृपा करके चलिए गुरुकुल हॉल में गौरंगा। बोल कृष्ण भगवान की।
हर जी हर हर लिखा है हर भगवान तू हर हर
हरि बोल
हर हर हरे मानो अब्दुल आलिया
हां हां नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवादी
हरे
कृष्ण देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाद गौर भक्तवृंद।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
जय श्री